नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी एक टिप्पणी की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी जी दिल्ली आए थे और उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके असली दुश्मन तो बीजेपी में ही हैं। अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें उनसे निपटना चाहिए, ना कि केजरीवाल को गाली देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कल अमित शाह जी दिल्ली आए और उनकी जनसभा में 500 से भी कम लोग मौजूद थे। दिल्ली आकर उन्होंने देश की जनता को गाली देना शुरू कर दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीटें 56% वोट शेयर देकर हमारी सरकार बनाई। पंजाब के लोगों ने हमें 117 सीटों में से 92 सीटें दी हैं। क्या पंजाबी पाकिस्तानी हैं? अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों के लोगों ने हमें प्यार और विश्वास दिया। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? इस बात पर इतना घमंड है कि आप लोगों को गाली देने लगे और धमकाने लगे। आप अभी तक पीएम नहीं बने हैं और इतने अहंकारी हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि लोग 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने फिर दावा किया कि पीएम मोदी ने अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को पीएम मोदी देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कई सर्वे आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और बीजेपी सरकार जा रही है। बिहार के महाराजगंज में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी कोई विरासत नहीं है, मेरी विरासत भी आप हैं और मेरे वारिस भी आप हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ही आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार सुबह ही दावा किया कि पीएम मोदी ने अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को पीएम मोदी देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूंगा। मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। जैसे जैसे 4 जून पास आ रही है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा, इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन लगता है। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तब इनमें 3 बुराइयां साफ नजर आती हैं, घोर कम्युनल हैं, घोर जातिवादी हैं, घोर परिवारवादी हैं। ईरान ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने एक हाई रैंकिंग प्रतिनिधिमंडल को सौंपी है। जांच के लिए प्रतिनिधिमंडल क्रैश साइट पर पहुंचा और उसने जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ ईरान में नए राष्ट्रपति चुने जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। नए राष्ट्रपति के चयन के लिए 28 जून को चुनाव का समय तय किया गया है और इसकी घोषणा की गई है। ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद अमेरिका से मदद मांगी गई थी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को एक बयान में कहा, अमेरिका किसी को भी ऐसी परिस्थिति में मरते हुए नहीं देखना चाहता। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि ईरान ने रईसी की तलाश के लिए अमेरिका से अनुरोध तो किया था, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। मिलर ने कहा, मैं विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन ईरानी सरकार ने हमसे सहायता मांगी थी। उन्होंने बताया कि अमेरिका मुख्य रूप से सैन्य कारणों से ऐसा करने में असमर्थ था। ईरान में नए राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ईरान में 28 जून को चुनाव कराया जाएगा। 30 मई से 3 जून तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 12 से 27 जून तक चुनाव के लिए प्रचार किया जा सकेगा। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नए राष्ट्रपति का चुनाव 50 दिनों के भीतर कराने का नियम है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।